कुंदाचार्य भगवान का समय सार है और समय सार के निर्जरा अधिकार के 200 नंबर की गाथा के बाद जो 137 नंबर का जो अपना कलश है उस कलश की बात चल रही है उसमें हम भावार्थ को देखते देखते पृष्ठ क्रमांक 79 पर आए हैं। यहां तो हमने देखा था, यहां तो कह रहे थे कि जो जीव सम्यक दृष्टि नहीं होते हुए भी अपने को सम्यक दृष्टि मानकर गर्दन ऊंची कर प्रफुल्लित चेहरे से कहता है कि मुझे किसी भी प्रकार के बंध नहीं होने वाले हैं, और वैसा जीव कहते हैं कि भले न महाव्रत पालन क्यों नहीं करता हो तो भी वह पापा है। पापा यानी कि पापी है। क्यों के उस वह तो आत्मा और अनात्मा इसके ज्ञान से रहित है, मतलब मिथ्यात्वी है, मतलब जो मिथ्यात्वी है वो महापापी है। ये बात अपनी चल रही थी तो इस देखते हुए हम पृष्ठ क्रमांक 79 पर आए हैं और यहाँ बीच में हम हैं बरोबर। अभी आप लेंगे
आ रही थी हमने तो नीचे तक देखा था 3, 3, 6, 3, 9 के बाद 10वीं लाइन से हम पढ़ेंगे। हम तो आए थे 14 लाइन तक। देखो यानी अन्य ने अयत्नाचार रूप प्रवर्तवु, अन्य जो शरीर आदि की क्रिया है उसको क्या कहते हैं, वो तो ये जो परद्रव्य की क्रिया है, आप परद्रव्यनी क्रिया थी तथा परद्रव्यना निमित्ते थता पोताना अशुभ भावो थी ज પોતાને બંધ થતો માને છે ત્યાં સુધી તેને સ્વ પરનું જ્ઞાન થયું નથી એમ જાણવું। એને સ્વ ક્યા હે પર ક્યા હે ઇસકા ભેદ વો નહીં જાન રહા, કારણ કે બંધ મોક્ષ તો પોતાના અશુદ્ધ તથા શુદ્ધ ભાવોથી જ થતા હતા। ઇસને ક્યા માના, અશુભ ભાવો સે હી બંધ હોતા હૈ એસા માના, और परद्रव्य की क्रिया से यानी शरीर आदि से कुछ तपादि क्रिया करेंगे तो मोक्ष होगा ऐसा माना। ख्याल है ना, यानी शरीर और मैं इससे भी भिन्नता नहीं जानता और अकेले अशुभ भावों को ही अशुद्ध मानता है, शुभ भावों से तो मोक्ष होगा मानता है और शुद्ध भावों की इसको पहचान नहीं है और ना ही उसने कभी प्रकट किए हैं। शुभाशुभ भावों तो बंधनाश कारण हता अने परद्रव्य तो निमित्त मात्र ज हतुं। तो परद्रव्य बंध के कारण थे के नहीं थे अश्विन भाई? नहीं, परद्रव्य कभी बंध का कारण नहीं हो सकता। यदि ऐसा होता तो हम तीन काल में कभी बंध से मुक्त नहीं हो सकते थे। तेमा तेने विपर्यय रूप मान्यो, ने उल्टा मान लिया, परद्रव्य की क्रिया करने से मुझे मोक्ष होगा ऐसा माना और अशुभ भावों से ही बंध होता है ऐसा माना, शुभ भावों से बंध होता है ये उसने स्वीकार नहीं किया है। अब आगे पढ़ेंगे, यहां तक तो हमने पढ़ा था। आ रीते जहां सुधी जीव परद्रव्य थी ज भलू बुरु मानी राग द्वेष करे छे, अभी तक हम क्या कर रहे हैं, करते आए हैं अनादि से ही, अपने परद्रव्य को ही भला बुरा माना है, इष्ट अनिष्ट माना ना। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में यही बात चल रही है, परद्रव्यों में ही इसकी इष्ट अनिष्ट बुद्धि है, बुद्धि ने मान्यता है।
जैसा हम फॉर एग्जाम्पल बचपन में भी सुनते आए हैं और हमने लोगों को करते हुए भी देखा है कि घरना बाहर पड़वू हो त्यारे जमणो पगज पहला बार पहलो राखो, राइट साइड दावे पैर से बाहर निकलते हैं तो खराब है, रास्ते में चले तो बिल्ली अपना रास्ता काटे तो तकलीफ है, ऐसा मानते थे लोग क्या? हम ये सारी बातें जो है पर द्रव्य से मेरा भला बुरा होगा, ये तो बिल्कुल बोलते हैं कि जीव की सही मान्यता नहीं है। परद्रव्य तो भाई कुछ करता ही नहीं ना, वो अपना अपना अपने अपने में परिणमन कर रहा है, तूने उठा उठा के उसको ये मेरा है ये मेरा है ये मेरे लिए फेवरेबल है ये नॉन फेवरेबल है ऐसे हमने ही चालू रखा है, ऐसी एक ने अनेक बातें होती है क्या? तो यहाँ तो कह रहे देखो परद्रव्य थी जो भलू बुरु मानी राग द्वेष करे, और जब तक ये चालू रहे त्या सुधी तेने सम्यक दर्शन नथी अने आगळ थशे पण नहीं, इवी रीते बिहेव करे तो की बात है वो।
यानी परद्रव्य अच्छे है बुरे है वो मुझे मेरा भला कर देंगे, भगवान मुझे सम्यक दर्शन दे देंगे या मुझे मोक्ष तक ले जाएंगे, गुरु मेरा भला करेगा,
वो तो बहुत आगे की बात है, ये तो घर की खिड़की बदले तो ठीक है, ऐसा भी है ना ये वास्तु शांति वाला ये करा था, ये
दक्षिण की ओर आपके मुंह की दरवाजा है वो निकालो, उधर से बंद करो दूसरा दरवाजा खोल दो, ऐसे हमने देखे कितने।
वो अभी हमारा बिल्डिंग का रिपेयरिंग चलने वाला है तो कारागिर बोलता है नहीं हम पूर्व दिशा से चालू करेगा, मैंने कहा अच्छा है मेरा ही पूर्व दिशा है सबसे। चलो
आ रीते ज्यां सुधी जीव परद्रव्य थी ज भलू बुरु मानी राग द्वेष करे छे त्यां सुधी ते सम्यक दृष्टि नथी, यानी तब तक वो सम्यक दृष्टि नहीं है, ये तो उसका लक्षण बता रहे। सम्यक दृष्टि जीव तो त्यां सुधी पोताने चारित्र मोह संबंधी रागादिक रहे छे, ज्यां सुधी चाहिए
पहले ज्यां चाहिए, ज्यां सुधी पोताने चारित्र मोह संबंधी रागादिक रहे छे
त्यां सुधी ते रागादिक विषय तथा रागादिक नी प्रेरणा थी एटले निमित्त थी, प्रेरणा ने कुछ वो ज्यादा उसमें कुछ फोर्स लगाता होगा ये बात नहीं है, जे परद्रव्य संबंधी शुभाशुभ क्रिया में ते प्रवर्ते छे ते प्रवृत्ति विषय एम माने छे के आ कर्म नु जोर छे। शू कहू मिथ्या दृष्टि क्या करता है, परद्रव्य से ही मेरा भला बुरा होगा मानकर राग द्वेष करता है, बराबर। और सम्यक दृष्टि क्या करता है, उसके भी राग द्वेष तो है परंतु उसके राग द्वेष संबंधी उसकी मान्यता क्या है, देखो कि सम्यक दृष्टि जीव तो ज्यां सुधी यानी जब तक पोताने चारित्र मोह संबंधी रागादिक रहे छे त्यां सुधी ते रागादिक विषय, अभी वो बीच वाला छोड़ दो, वो रागादि के बारे में क्या समझता है, रागादिक विषय आ कर्मनु जोर छे माने छे, और किसमें, अभी रागादि के निमित्त से होने वाले जो परद्रव्य की क्रिया है यानी शरीर आदि की क्रिया है वो भी क्या मानता है, ये कर्म का जोर है। देखो कर्म का क्यों लिया, देखो जैसे शरीर का बनना और शरीर की क्रियाएं इसमें कर्म का निमित्त है, वैसे ही जीव के जो रागादिक भाव है उसमें भी कर्म का निमित्त है, तो कर्म दोनों में निमित्त है ना, तो राग का और शरीर का ऐसा ही आपस में बनेगा, जिस प्रकार का राग का उदय है उस प्रकार के शरीर की भी क्रियाएं होगी, जैसे हास्य कर्म का उदय है तो हास्य का भाव हो रहा है और शरीर में हंसने रूप गाल के फूलने रूप या जो कुछ एक्शन होती है वो शरीर में भी होती है, और ये जीव क्या मानता है, ये सारा मिलकर मेरा है, उससे उसको डिफरेंशिएट नहीं हो रहा, तो सम्यक दृष्टि क्या मानता है, ये कर्म के उदय का कार्य है, सब में लगा लेना, ऐसे भय ले लो हास्य ले लो क्रोध ले लो सभी में ऐसा लेना, शरीर की भी उस समय जो क्रियाएं होती है, अभी कुछ शुभ भाव हुआ इसको क्योंकि हम तो हमेशा ये हास्य भय शोक जो कुछ है क्रोध मान माया उसकी बात छोड़ो, हम तो अच्छा उच्चे में उच्च शुभ भाव कर रहे हैं, तो वो तो मैं कर रहा हूँ ना। देखो मैंने मंदिर बनवाया, मैंने इतना शास्त्र लिखा, तो ये तो मैंने क्रिया की कि नहीं की ऐसा किसी को मन में संभव है? तो वहां कहते हैं वो क्या जानता है, ये जो शुभ भाव हुआ वो भी कर्म का उदय है, और शरीर की जो कुछ वहां क्रिया हुई उसमें भी, क्योंकि उसका निमित्त नैमित्तिक बना ना, राग का निमित्त वो शरीर की क्रिया में बना, लिखने का राग हुआ, मंदिर बंधाने का राग हुआ, तो उस राग का और वो शरीर की क्रिया ऐसा भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है। पुद्गल की जो रचना हुई वो तो स्वयं अपने से हुई, इसका निमित्त ही हम कह सकते हैं थोड़ा। मंदिर बना तो उसके पुद्गल की रचना क्यों हुई, इसने कराई कि वो स्वयं अपने से हुई है?
स्वामी जी को जब पूछे हाँ। जाते हैं कि आपने इतने मंदिर बांधे, क्योंकि उसके पहले नहीं कुछ बंधे थे, वो काफी बंधे उनके मतलब पीरियड में, तो कौन बांधे ऐसा बोलते थे, ये तो तेनु परिणमन जारे थबू होए त्यारे था। इनके बाद और एक ऐसा भी आरोप आता था, आप हमेशा समय सार ही कौन पढ़ते, क्यों पढ़ते हो, अन्य शास्त्र क्यों नहीं पढ़ते हो? तब भी ऐसा कहते थे कि जिस समय जो शुभ राग आवे वो आवे, हाँ, और उस रूप निमित्त सामने जो शास्त्र है उसको पढ़े। बहुत मतलब उनकी तो इतनी क्लैरिटी थी सब बातों की। आगे
देखो इसको फिर पढ़ते, समय दृष्टि जीव तो जहाँ सुधी पोताने चारित्र मोह संबंधी रागादिक रहे छे, ये वितराग होने के बाद की बात नहीं है, जब तक उसके राग है उस समय वो क्या कर सोचता है, त्या सुधी ते रागादिक विषय तथा रागादिक नी प्रेरणा थी, यानी रागादिक के निमित्त से जे परद्रव्य संबंधी शुभाशुभ क्रिया मा ते प्रवर्ते छे, वो क्रिया छोड़ देता है ऐसी बात नहीं है। देखो जब कहते हैं हम जब कहते हैं ना, तो ये परद्रव्य की क्रिया ही नहीं कर सकता, किसी को बचा नहीं सकता, तो फिर कहता है वो सामने वाला गिर गया अभी वो मरने वाला है गाड़ी के नीचे, मैं उसको उठाऊ के नहीं उठाऊ, ये क्या सोचता है? ये क्या कराया, वर्ते छे, अकेले शुभ में नहीं अशुभ में भी प्रवर्ते छे, और प्रवर्तते हुए उसकी मान्यता क्या है? जब ये सुनता है कि मैं कर नहीं सकता, तो सामने देखकर भी अरे मुझे तो नहीं करना है ना, क्योंकि अभी ऐसा मैं करूंगा तो शास्त्र के विरुद्ध बात है, यानी वो करना चाहता है, करने के भाव उठते हैं, परंतु वो नहीं, अपने आप को रोकना चाहता है, ये उसका वो उस क्रिया छोड़ने की क्रिया का भी कर्ता बनता है, ये उसके भूल ख्याल में नहीं आती। यहाँ क्या कहा, वो परद्रव्य संबंधी क्रियाओं में प्रवर्ते छे, प्रवर्तता है, और ऐसे ते प्रवृत्ति विषय एम माने छे, यानी रागादिक के बारे में और प्रवृत्ति के बारे में क्या मानता है, ये कर्म के उदय की क्रिया है, ठीक है ना, कि आ कर्मनु जोर छे तेनाथी निवृत्त थयेश मारू भलू छे, ये मान्यता में लिया है। अभी वो तो प्रवृत्ति में तो उसके शुभ शुभ क्रियाएं चल रही है, और भावों में भी राग भाव उठ रहे है। देखो ये बात जरा बराबर ग्रास करना, ख्याल में लेना, ये मर्म की बात है। जब तू परद्रव्य की क्रिया नहीं कर सकता है, कहते हैं तो अभी मैं नहीं करूंगी कल से, तू रोटी नहीं बना सकती तो कल से मैं बनाऊंगी ही नहीं, ये कहता है, यानी मान्यता तो वैसी की वैसी रही। जब रोटी बनाने का भाव है और रोटी अपने स्वयं की योग्यता से बन रही है और उसमें प्रवृत्ति इसकी चल रही है, तब वो क्या समझता है, ये तो कर्म का जोर है, वो उसके परद्रव्य की क्रिया अपने आप चल रही है, ऐसा नहीं मानता, या तो करना चाहता है या छोड़ना चाहता है, यानी उसकी भूल अभी भी बाकी है, ये पकड़ में नहीं आता लोगों को। तो कहते हैं कि वो प्रवृत्ति में क्या मानता है कि कर्मनु जोर छे, और क्या मान्यता में है कि एनाथी निवृत्त थयेज मारू भलू छे, निवृत्त कैसा होगा, राग तो आ रहा है परंतु उसको दबाना चाहता है, वो निवृत्त होने का तरीका नहीं है। जब स्वरूप का अधिक आश्रय होगा तो उस जाति के राग ही नहीं उत्पन्न होंगे और उस जाति की प्रवृत्ति भी नहीं होगी, तब उसको निवृत्त हुआ ऐसा कहने में आया है। इसके तो राग बहुत उठ रहे हैं, परंतु अभी क्या करे, जैसे मैं बच्चे को जोर से गाली देने का मारने का भाव आया नहीं, परंतु क्या मैंने तो अभी व्रत अंगीकार किया बच्चे के हाथ नहीं लगाना है, ऐसे भी होते हैं लोग। तो अंदर ही अंदर गुस्सा तो हो जाते हैं, परंतु क्या करना, अभी वो शरीर की क्रिया को रोक लगाया है ना, जैसे उपवास की किसी ने प्रतिज्ञा की और घर में कुछ बात बन रही है, सीरा बनाया कोई भजिया बनाया, तो ये बहुत खाने की इच्छा हो रही है, परंतु मैंने तो डिसाइड किया है अभी नहीं खाऊंगा, तो ये क्या है उसका, ये खाली उसने यानी मन में भाव तो हो ही रहे उसके भोगने के सारे, और नहीं नहीं मैंने रोक लगा लिए, ये उसका तरीका नहीं है। जो भाव ही नहीं उठेंगे तब उसको कहने में आएंगे कि इसने उसको छोड़ा, तब तक क्या उसको वो मान्यता में है कि उसके ये छोड़ने लायक है, पहले ऐसे मान्यता में उसको होगा, और स्वरूप के आश्रय से वैसे उस जाति के भाव नहीं उत्पन्न होंगे, ये तरीका है। देखो क्या कहते हैं, तेनाथी निवृत्त थेज मारु भलू छे ते तेमने रोगवत जाने छे। अपने में उठने वाले शुभ हो या अशुभ हो तो वो उसका जानता है, मैं कहां पड़ा हूं, ऐसे उसको, क्योंकि वो जो उठने वाले के प्रति उसको, अरे इससे छूटूंगा तो मैं अपने स्वरूप में अधिकाधिक स्थिर हो जाऊं तो ये मेरे से छूटेंगे, ऐसे वो उसकी वो मान्यता है वहां पर। पीड़ा सही शकाती नथी तेथी तेमनो इलाज करवा रूप प्रवर्ते छे। देखो जब लड्डू खाने की इच्छा हुई तो मिथ्या दृष्टि क्या मानता है, अरे वाह मैं तो भोग भोग रहा हूं, देखो मैं कितना सुखी हूं, मुझे इसमें से आनंद आ रहा है, और सम्यक दृष्टि को भी उसमें तो वो खाने की इच्छा उसके भी हो रही है, परंतु वो इच्छा क्या है, दुख है, और उस दुख का इलाज करता है, दुख का इलाज चल रहा है, और जो मिथ्या दृष्टि वो मानता है तो मैं तो सुख भोग रहा हूं, देखो मैं सुखी हूं दूसरों से, यानी वो इच्छा हो रही है उसको वो दुख नहीं मानता है, इच्छा नहीं हो तो जाके डॉक्टरों के पास इलाज करेगा, नहीं मालूम आपको, खाने की इच्छा नहीं होती है, है? तो ये जरा भूख लगे ऐसी दवा दे दो। देखो तो पण पीड़ा सही शकाती नथी तेथी तेमनो इलाज करवा रूप प्रवर्ते छे, तो पण तेने तेमना प्रत्ये राग कही शकातो नथी। उसको वैसा राग नहीं कह सकते, प्रवर्तन तो चल रहा है फिर भी वैसा राग नहीं है उसको, एक तो बुद्धि तो है ही नहीं है, कारण के जेने रोग माने तेना प्रत्ये राग के, वो जैसे शरीर में कोई रोग हो जावे तो हम झट से उसका इलाज करें, बोले इंजेक्शन लेना पड़ेगी कि वो हाथ पूरा काट के फेंक देना पड़ेगी, एंगरिंग हो तो क्या करेंगे, हाँ तो उसको अच्छा मान रहे क्या, नहीं ना, परंतु वो रोग का इलाज करने के लिए कर रहे हैं, वैसे यहाँ जो राग भी उत्पन्न होता है प्रवृत्ति में भी है फिर भी उसको रोग मानते हैं, उसका अच्छा नहीं मान रहे, ते तेने मटाड़वानो ज उपाय करे छे। मिटाने का उपाय क्या करेंगे, अपने स्वरूप में अधिकाधिक, वो भेद ज्ञान तो हर समय चलता रहेगा उनका, और फिर वो शुद्धोपयोग में भी बार बार जाने की कोशिश होगी, अने ते मटवू पण पोताना ज ज्ञान परिणाम रूप परिणमन थी माने छे। यानी ये जो मिटेगा ये मानते हैं, राग मिटेगा तो कैसे मिटेगा, पोताना ज ज्ञान परिणाम रूप परिणमन थी, स्वयं ज्ञान रूप परिणमित होते रहेगा, तो हर समय तो हो रहा है परंतु वो तो राग में भी जुड़ता है ना, तो ज्ञान ज्ञान में ज्ञान रूप से जब रहने के अधिकाधिक प्रयत्न होगा उससे ही वो राग रूप परिणमन मिटते चला जाए, वो मंद होते चला जाएगा। आ रीते सम्यक दृष्टि ने राग न थी, यानी उसके राग को यहां राग नहीं कहा जिस अपेक्षा से ये बात हो रही है। आ प्रमाणे परमार्थ अध्यात्म दृष्टि थी अही व्याख्यान जानवू, क्योंकि कोई करना नियोग का थर्मामीटर लाके यहां रखे, देखो इसको राग नहीं लिखा है, और हमने तो जाना है कि दसवें गुण स्थान के अंत से राग है, वो बात नहीं, यहाँ किस अपेक्षा से बात चल रही है, अध्यात्म दृष्टि से यहाँ व्याख्यान चल रहा है, तो उसके राग का राग नहीं है, उस अपेक्षा उसको राग नहीं है, ये बात यहाँ बताई। अहीं आगे लिखा देखो, मिथ्यात्व सहित राग ने ज राग कयो छे, मिथ्यात्व विना चारित्र मोह संबंधी उदयना परिणाम ने राग कयो नथी। जब मिथ्यात्व जाएगा उसके साथ उसके हाथ में हाथ मिलाकर अनंत आनुबंधी भी चले जाएगा। अभी तीन कषाय चोकड़ी भी रहती है चौथे वाले को, तो भी उसको यहाँ राग में नहीं गिना है अध्यात्म की दृष्टि में। माटे सम्यक दृष्टि ने ज्ञान वैराग्य शक्ति अवश्य होय छे। ज्ञान तो समझ में आए, ज्ञान अपने को ज्ञान रूप अनुभव कर रहा है, और वैराग्य ने वो राग से अपनी भिन्नता जानता है। विराग भी कहा उसको, वैराग्य भी कहा। वैराग्य ने हमने उदासीन हो जाते ना, घर में कोई मर गया तो उदास, वो वैराग्य नहीं। या घर में कोई बराबर अपने को देखभाल नहीं करते तो चलो अभी दीक्षा लेके निकल जाएंगे, उसको वैराग्य नहीं कहते। तो ये अपने में उठने वाले रागों से जो भिन्नता है, भेद ज्ञान उसने कर लिया है, तो उसको यहाँ वैराग्य कहा है। तो सम्यक दृष्टि ने ज्ञान वैराग्य शक्ति अवश्य होय छे। वैराग्य क्यों? क्योंकि उसके तो अभी मिथ्यात्व तो नहीं, अनंतानुबंधी नहीं है, और जितने कषाय चोकड़ी है उससे वो भेद ज्ञान करते हैं। वो भेद ज्ञान तो उनका निरंतर चलता ही रहता है, इसलिए उसके वैराग्य शक्ति कही उनके। मिथ्यात्व सहित राग सम्यक दृष्टि ने होतो नथी, अने मिथ्यात्व सहित राग होय ते सम्यक दृष्टि नथी। दोनों ओर से बता दिया आवा, एटले मिथ्या दृष्टिना अने सम्यक दृष्टिना भावोना तफावत ने सम्यक दृष्टि जाने छे। ऐसा क्यों? क्योंकि भावों की बात है ना, हम कहां से जांचना चाहते हैं पर दूसरे को परखना है उसके बाह्य आचरण से। अभी उसके अभिप्राय में ये जो फर्क है, राग से उसके जो भेद ज्ञान चलता है, राग अपना नहीं मानता है, क्योंकि दोनों ही परद्रव्य की क्रिया कर रहे ऐसा दिख रहा है, दोनों ही राग में है वो भी दिख रहा है। शुभ राग मिथ्या दृष्टि को भी है, सम्य दृष्टि को है, अशुभ राग भी दोनों को है, क्योंकि अभी कुटुंब में गृहस्थ में गृहस्थ अवस्था में है, तो उस कुटुंब संबंधी उसके राग द्वेष उसके भी हो गए कि नहीं हो गए। बच्चे ने कोई तकलीफ बुरी चीज की तो उसको डांटेगा भी मारेगा भी, तो अरे ये दोनों सरीखे दिख रहे। उल्टा तो कभी कभी क्या है, मिथ्या दृष्टि बहुत भला दिखता है और सम्य दृष्टि क्रोध करते हुए दिखाई देता है। जैसे कोई अन्याय करता है, अनीति होती है तो उसके प्रति उसको चिढ़ है, तो वो उसका वो क्रोध भी दुनिया को दिखेगा और कहेंगे ये इतना आप करते हैं, शास्त्र स्वाध्याय करते हैं और अपने को सम्य दृष्टि मानते हो, इतना क्रोध करते हो, ऐसी भी बात होगी ना वहां पर। तो उसकी जो राग के प्रति उसकी रुचि नहीं है और राग में एकत्व बुद्धि नहीं है, परद्रव्य की क्रिया को अपना नहीं मान रहा है, ये जो तफावत है, ये जो अंतर है दोनों में, तो जिसने उससे जैसे ऐसा अनुभव कर लिया है भेद ज्ञान का, वही समझेगा। मिथ्या दृष्टि तो शास्त्र में से पढ़कर कहेगा नहीं नहीं ये ऐसे बात है वैसी बात है। ये बात बताना चाहते हैं, क्या कहते हैं कि जो उसके भावों में जो अंतर है उसको सम्यक दृष्टि पहचानेगा। मिथ्या दृष्टि नो अध्यात्म शास्त्र में प्रथम तो प्रवेश नहीं, क्योंकि मिथ्या दृष्टि वो उसके तो रुचि नहीं है ना, तो अध्यात्म शास्त्र की बात छोड़ो, आगम की भी बात उसके पता नहीं है। उसको तो ये कुछ आत्मा अनात्मा की बात जानने लायक है, मेरे कल्याण की, ऐसा भी उसको समझ में नहीं आता, तो उसका इसमें प्रवेश नहीं है। अने जो प्रवेश करे तो विपरीत समझे छे, क्योंकि जैन ही हमारे है ना सब, हम जैनी है, उसमें कितने ही जीव ये शास्त्रों का अभ्यास करके उसमें से गलत अर्थ निकालते हैं, क्योंकि अपनी जैसी मान्यता है तो उनको सामने वाले शब्दों को वैसे मरोड़ देते हैं अपनी मान्यता के अनुसार। तो कहते हैं विपरीत समझे छे, व्यवहार ने सर्वथा छोड़ी भ्रष्ट थाय छे, अथवा तो ये दोनों प्रकार के लिए, व्यवहार को सर्वथा छोड़कर भ्रष्ट ने स्वच्छंदी हो जाते। कैसे? अरे मैं तो केवल ज्ञान स्वरूप हूं, मुझे बंध ही नहीं है, ये अभी लिया ना, ये उसको क्या कहेंगे हम?
निश्चयाभासी।
व्यवहार को सर्वथा छोड़ दिया, अथवा तो निश्चय ने सारी रीते जान्या बिना व्यवहार थी ज मोक्ष माने छे, ये व्यवहारभासी हो गए। व्यवहार ही करेंगे और उसी से मोक्ष, वो तो व्यवहार है ही नहीं है, व्यवहारभासी है। परमार्थ तत्व मां मूड रहे छे, यानी जो निश्चय तत्व जो है, आत्मा अनात्मा की पहचान है, उससे वो अनजान रह जाते हैं। कुछ क्रिया करके ही मोक्ष होगा ऐसा मान लेते हैं। जो कोई विरल जीव, हमारे आप जैसे जो कोई विरल जीव, क्या कहते हैं, यथार्थ स्यादवाद न्याय थी। स्यादवाद न्याय क्या है? स्यादवाद अपेक्षित कथन जो होता है उसको स्यादवादवाद यानी कथन, स्यात यानी अपेक्षित कथनचित। तो जैन आगम में जिस तरह से जिस अपेक्षा से जहां जो बात की है उसको उसी अपेक्षा से समझना उसको कहते हैं स्यादवाद न्याय थी। सत्यार्थ समझी जाए तो सत्य जो समझ में आवे तो तेने अवश्य सम्यक्त्वनी प्राप्ति थायज ज लगा दिया यानी न थाय एम नहीं एम एम कहते थायज थायज छे ते अवश्य सम्यक दृष्टि बनी जाए छे। देखो ये जयचंद जी ने कितनी कितना बड़ा भावार्थ लिख दिया इसके ऊपर, क्योंकि अभी वर्तमान में जो कोई लोगों के मन में जो भ्रांति है और समाज में जो जो कोई बातें देखने में आती है तो उस समय भी यही सारी मुश्किलें थी जो अभी भी चल रही है, तो इसलिए इन्होंने इतना भावार्थ इस कलश पर लिख दिया। अभी स्वामी जी इस पर क्या कहते हैं उसको अभी हम देखेंगे। ये 90 नंबर पर आप पढ़ेंगे।
यहाँ तक आए हैं
मुझे भी ऐसे लगा कलश 100। अभी श्लोकार्थ होना था ना, भावार्थ तो बाद में है, पहले श्लोकार्थ से लेते हैं। हाँ
देखो हम पृष्ठ क्रमांक 85 पर आए हैं। ये कलश के ऊपर जो श्लोकार्थ है उसके ऊपर के प्रवचन को देखेंगे। आहा हा मुनिवर ने क्या है कोई नहीं पढ़ी छे, तेवो तो कहे छे भाई सत्य तो आ छे, एम के तू माने गम्मे तेम पन सत्य तो आ छे। शू तो कहे छे यानी वो क्या कहना चाहते हैं कि मुनिराज जो होते हैं वो सभी से उदास रहते हैं। उदास रहते हैं यानी ये बैरागी रहते हैं, ऐसा नहीं कि उनको किसी के प्रति भी राग या द्वेष की प्रवृत्ति नहीं है कि ये सुने तो मेरे लिए अच्छा है ये नहीं सुने तो मेरे लिए बुरा है, कोई मुझे खाना देगा कि नहीं देगा, ऐसे उनको किसी बात की पड़ी नहीं रहती है। तो क्या कह रहे हैं, क्या कोई नहीं पड़ी छे यानी जो सत्य बात कहने से किसी का दिल दुखाए दे तब भी उसको उनकी चिंता नहीं होती, क्योंकि सत्य बात अगर वो नहीं कहेंगे तो और कौन कहेगा कि जिन्होंने सत्य को समझा है अनुभवा है हाँ? और वो बात आप वो नहीं बताएंगे तो कैसा उनके किसी भी पर जीवों के प्रति समाज में एक ही रहेगी कि नहीं कि समाज में झगड़ा हो जाएगा, ऐसी कोई उनको चिंता नहीं है। तो क्या लिखते हैं देखो, मुनिवर ने साधी मुनि की बात नहीं की, मुनिवर वर यानी समझ में आया जैसा हम हाँ मुनिवर यानी श्रेष्ठ मुनि। देखो हम देखते हैं ना ये तरतम भाव जो होता है यानी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, तो उसमें जैसे गुड बेटर एंड बेस्ट वैसे यहाँ भी मुनिवर यानी मुनियों में जो श्रेष्ठ है ऐसे मुनिवर क्या है कैसे हैं, तो इमने क्या कोई नहीं कहीं पड़ी छे एम के छे के भाई सत्य तो आ छे। तो आपकी जो मान्यता है उस मान्यता के अनुसार तुझे जो मानना है सो मान, पर ये जो सत्य है वो ये है क्या है, अयम अहम स्वयं सम्यक दृष्टि में जातु बंधन स्यात, आहू पोते सम्यक दृष्टि छू मने कदी बंद थतो नथी इति एम मानी ने उत्तान उत्पूलक वदनाहा जेमनु मुख गर्वती ऊंचू तथा पुलकित थयू छे एवा रागीण रागी जीवो यानी ये है तो मिथ्यात्वी जीव लेकिन स्वयं को सम्यक दृष्टि मानता है और वो मिथ्यात्वी फिर ये आपको कैसा पता लगा। तो कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि मने कदी बंद थतो नथी, तो ये ऐसी जो बात कह रहे हैं वो सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकते ख्याल में है ना। तो क्या कह रहे हैं, और वो तो ऐसा गर्व से ऐसे मुंह उठा के चल रहा है, गर्दन उठा के चल रहा है। शू कहे छे, अज्ञानी जीव बारनी क्रिया थी गर्विष्ट थई मानवा लागे छे के हूँ सम्यक दृष्टि छू, हूँ धर्मी छू। देखो भाई, हमको तो एक बात को मालूम है ना कि जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं वो आठ गुणों से युक्त होते हैं, या उन्हें मद नहीं होता। ये कौन से बातों का मद नहीं होता है कुछ याद है? नंबर नंबर बोलो। आठ मदों से रहित होते हैं। और ये कैसा ज्ञान मद है उनको, ख्याल में आया कि मैं ज्ञानी हूँ, समझ में? तो कह के अज्ञानी जीव बारनी क्रिया थी गर्विष्ट मानी थी मानवा लागे छे के हूँ सम्यक दृष्टि। यहाँ तो दूसरी बात ली है, ये बाह्य क्रिया करने से मैं सम्यक दृष्टि हूँ ऐसा इनकी मान्यता है। मने कदी बंद थतो नथी, केम के सम्यक दृष्टि ने भोगनी निर्जरा थई जाय छे। भोग थी है के भोग, भोगनी निर्जरा थई जाय छे, माटे हूँ निर्जरावंत छूं। आ राग आवे छे ए तो चारित्रनो दोष छे, अमने तो अराग परिणाम होवाथी जे राग आवे छे ते झरी जाय छे। आहाहा, पोताने रागनी अंदर रुचि पड़ेली छे, छता शास्त्रोमां आम कह्युं छे एम मानी जे गर्व करे छे तेने कहे छे के भाई तू रागने पोतानो माने छे ते मिथ्यात्वनो दोष छे। ये पहली बात उनके बारे में हम पकड़ ली है। कौन सी? के राग ने पोतानु माने छे ते मिथ्यात्वनो दोष छे। भगवान केवड़ी सर्वज्ञ परमेश्वर ने शू कहेलू छे, शू कहेवू छे ते समझवानी दरकार करता नथी, तेनो मनुष्य भाव ढोर समान छे। आकरी वात छे प्रभु, पन सत्य वात छे। देखो यहां अभी आपको मुझे स्वामी जी की याद आई, वो कभी भी प्रवचन में कहते थे कि आ बदा सेठियाओ ढोर में जवाना, यानी कि तीरंज गति में जाएंगे। क्यों? यहां उसका उत्तर दिया है कि भगवान केवड़ी सर्वज्ञ परमेश्वर ने शू केहूं छे ते समझवानी दरकार करता नथी, माटे तेनो मनुष्य भव। ते तो अत्यारे हाल में जे मनुष्य भाव छे ते ढोर समान छे, अने आगळ जशे तो त्यां ज जशे। क्योंकि इनके तो क्या है, जैन कुल में जन्मे हैं, खोटी आदतें नहीं होती हैं, पाप नहीं करते हैं, शुभ परिणाम करते हैं। लेकिन जिनेन्द्र भगवान ने जो बात बताई है कि तूने तो अपने स्वयं को समझकर अपना कल्याण करना है, ये बात समझवानी दरकार करता नहीं, तो क्या जशे? तो कि ढोर में जशे। पोताने राग छे, राग नो प्रेम छे, छता हूँ धर्मी छु एम अज्ञानी माने छे। तेने कहे छे के भाई जेने शुभाशुभ भावनी रुचि प्रेम, जेने शुभ भावनी रुचि एटले प्रेम छे, जे शुभ भावने भलो ने कर्तव्य माने छे ए मिथ्या दृष्टि छे। तेने सम्यक दर्शन केवू, आ ज्ञानी नो भोग निर्जरा नो हेतु छे एम गाथाओ आवे ने, तेना ऊपर नो आ कलश छे। अरे भाई, भोग निर्जरा नो हेतु केम होय? ए तो ज्ञानी ज्ञान स्वभाव ने आदर्यो छे, तेने निज आनंद स्वरूप नो आश्रय वर्ते छे, तेथी तेने जे भोग नो राग आवे छे तेनो ते स्वामी नहीं थतो होवाथी नवो बंद कर्या विना ते झरी जाय छे एम त्या वात छे। शू भोग कई निर्जरानो हेतु होय के न होय, पण शास्त्रमां कह्युं छे एम जाणी कोई भोगनो अभिप्राय राखे छे ते तो ते मिथ्या दृष्टि छे। आवी बात बापा बहु जीणी। भाई आ मनुष्य भाव मळ्यो छे, पण भगवान केवड़ी शू कहे छे ते जो समझवामां न आव्युं तो ते निष्फळ छे। શું નિષ્ફળ છે? મનુષ્ય ભાવ નિષ્ફળ છે એમ કે છે. મોટો સાધુ થયો તોય શું? એ જ કહે છે કે જેમનું મુખ ગર્વથી ઊંચું તથા પુલકિત થયું છે એવા રાગી જીવો, પરદ્રવ્ય પ્રત્યે રાગ દ્વેષ મોહવાળા જીવો, અપી ભલે આચરંતુ, મહાવ્રતાદિનું આચરણ કરો તથા સમિતિ પરતામ આલંબતામ, સમિતિને ઉત્કૃષ્ટતાનું આલંબન કરો, અદ્ય અપી તો પણ તે પાપાહા, તેવો પાપી જ છે. અભી આજકાલ તો બચ્ચે લોગ ભી સમજને લગે હૈ. હા, ક્યા અપને પિતા કો ક્યા કહેતે હૈ? પાપા. તો પાપી ઇતના ખુશ હોતા હૈ કે પૂછો મત. શું કહ્યું? પાઠમાં છે, જુઓ કે રાગીનો અપી આચરંતુ, રાગી જીવો અહિંસા, પરની દયા, સત્ય, અચૌર્ય, બ્રહ્મચર્ય અને અપરિગ્રહ એમ પાંચ મહાવ્રતનું આચરણ કરો તો કરો, અને જોઈને ચાલવું, નિર્દોષ આહાર લેવો, હિતમિત બોલવું ઇત્યાદિ ઉત્કૃષ્ટપણે સમિતિનું ભલે આલંબન કરો તો પણ તેવો પાપી જ છે, મિથ્યા દૃષ્ટિ જ છે. એ દેખો અહીંયા તીન બાતે બતાવી હૈ. વો મહાવ્રતો જો આપણા 28 મૂલગુણ મેં કોણ સે વ્રતો કો બતાને વાલે હૈ યે આપકો સમજના હૈ. હા, ક્યા કહે રહે? દેખો દેખો, હિતમિત પ્રિય બોલવું, યે ક્યા હોગા? ભાષા સમિતિ, બહુ અચ્છા. અને જોઈને ચાલવું, હા બેન, ઈર્યા સમિતિ. ઓર નિર્દોષ આહાર લેવો, યે આપને હો ગઈ ના બાત? દેખો અભી કિતના સમજ મેં આતા હૈ કે સ્વામીજી ક્યા બતાના ચાહતે હૈ. તો એ 28 મૂલગુણ જો હૈ ઉસમે સે યે બાત હૈ. તો એસા આચરણ ઉત્કૃષ્ટપણે કરે તબ ભી જહાં તક આત્મા કી અનુભૂતિ નહીં હૈ તો વો પાપા હૈ. અબ યે નીચે સે ચોથી લાઇન. કેમ? કેમ કે તેમને રાગમાં સુખ બુદ્ધિ છે, રાગમાં ઉપાધેય બુદ્ધિ છે, અને તેમને ચૈતન્ય મૂર્તિ વિતરાગ મૂર્તિ પ્રભુ આત્માનો આશ્રય લીધો નથી. દો બાતે હો ગઈ ના? તેમને રાગમાં હેય બુદ્ધિ અને નિજ ચૈતન્ય સ્વભાવમાં ઉપાધેય બુદ્ધિ થઈ નથી, તેથી તેઓ પાપી જ છે. આકરી વાત બાપા. પણ ત્રણેય કાળ વિતરાગનો માર્ગ આ જ છે. ભગવાન આત્મા સદાય રાગ રહિત શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ, વિતરાગ સ્વરૂપ જ છે. આવો ચિદાનંદ ગણ પ્રભુ આત્મા જેને ઉપાધેય આદરણીય કર્યો છે તેની પરિણતિમાં નિરાકુળ આનંદમય વિતરાગતા આવે જ છે. પરંતુ આત્માનો આશ્રય છોડીને, રાગને આદરણીય માનીને કોઈ મહાવ્રતાદિ પાળે તો પણ તે મિથ્યા દ્રષ્ટિ જ છે. રાગમાં સુખબુદ્ધિ છે તેવા જીવો ભલે અમે સમકીતી છીએ એમ નામ ધરાવે અને બહારમાં સાધુપણાનું આચરણ કરે, આહાર વિહાર આદિ ક્રિયાઓમાં જતનાથી પ્રવર્તે, જતનાથી એટલે પ્રયત્નપૂર્વક, પ્રાણ જાય તો પણ ઉદ્દેશિક આહાર ગ્રહણ ન કરે. ઉદ્દેશિક આહાર કા અર્થ આપ જાણતે હૈ કે ઉનકે ઉદ્દેશ સે બનાયા ગયા આહાર વો નહીં લેતે હૈ. તો કહેતે પ્રાણ જાય. કિસકી વાત કર રહે હૈ? કે જો સચ્ચે સાધુ હૈ ઉનકી હો તો પણ તે પાપી છે. અભી યહાં તો કહે રહે કે જો એસી ક્રિયા કરતે હૈ ફિર ભી જિનકે મિથ્યાત્વ ગયા નહીં હૈ તો ઉનકે લિયે વો હંમેશા વિશેષણ દે દિયા, મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે એમ અહીં કહે છે. જુઓ છે કે નહીં કલશમાં? આલંબતામ આલંબનતામ સમિતિ પરતામ તે યતો હો અદ્યાપી પાપાહ. છે સ્પષ્ટ? આહા, જેને શુભરાગનો આદર છે શુભરાગ કર્તવ્ય છે એમ જેને માન્યું છે તે મહાવ્રતાદી ગમે તે આચરણ કરે તો પણ તે પાપી જ છે. કલશમાં પાપા એમ શબ્દ છે, છે કે નહીં ભાઈ? મિથ્યાત્વનું પાપ મહાપાપ છે, લોકોને ખબર નથી, પણ વ્યવહારનો રાગ કર્તવ્ય છે, ધર્મ છે એમ જેને માન્યું છે તે મિથ્યાદૃષ્ટિ પાપી જ છે. પરંતુ તે પાપ અશુભ ભાવ તો કંઈ કરતો નથી. ભલે તે પાપ અશુભ ભાવનો હિંસાદીનો કરનારો નથી, તો પણ તેને આચાર્ય શ્રી અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવે પાપી કહ્યો છે. બહુ ગંભીર વાત છે ભાઈ. પ્રચુર નિરાકુળ આનંદ અને અકશાય શાંતિની પરિણતિમાં રહેનારા ધર્મના સ્તંભ એવા આચાર્ય દેવનું આ કથન છે. મૂળ ગાથા આચાર્ય કુંદકુંદની છે અને 1000 વર્ષ પછી તેની આ ટીકા આચાર્ય અમૃતચંદ્રની છે. અહો વિતરાગી મુનિવરો, જંગલમાં વસનારા મુનિવરોનો આ પોકાર છે કે રાગને કર્તવ્યને ધર્મ જાણી કોઈ અહિંસાદી મહાવ્રતનું આચરણ કરે તો કરો, પણ તે પાપી જ છે. કેમ કે તેને મિથ્યા દર્શનના અભાવરૂપ સમ્યક દર્શન નથી વા આત્માનુભવ નથી. મિથ્યા દર્શન એ જ મૂળ પાપ છે. પણ ચરણાનુયોગમાં મહાવ્રતાદીનું વિધાન તો છે, હા છે, પણ ચારેય અનુયોગનો સાર વિતરાગતા જ છે, રાગ નહીં. 85 ટીકા ગાથા 172માં છે કે ચારેય અનુયોગનું તાત્પર્ય વિતરાગતા છે. વિતરાગના માર્ગમાં સર્વત્ર વિતરાગતાનું જ પોષણ છે. ચરણાનુયોગમાં પણ રાગનું પોષણ કર્યું નથી, તેમાં રાગને જણાવ્યો છે પણ પોષણ તો વિતરાગતાનું જ કર્યું છે. ચરણાનુયોગમાં સાધકને વિતરાગ પરિણતિ સાથે યથાસંભવ કેવો રાગ હોય છે તેને ધ્યાન કરાવ્યું છે. તેનું પોષણ નહીં, પુષ્ટિ તો એક વિતરાગતાની જ કરેલી છે અને એ જ વિતરાગનો માર્ગ છે. સમજાણું કાંઈ? યાને યહાં યે સમજા રહે હૈ, પ્રત્યેક અનુયોગ કી કથન શૈલી જુદી જુદી હોતી હૈ. ઓર વહાં ચરણાનુયોગ મેં તો બાત એસી હોતી હૈ કે ફલા ફલા ભૂમિકા કા જીવ કિસ તરહ સે વર્ત રહા હૈ, તો અંતરંગ કી જો અનુભૂતિ કા જો કોઈ વ્યાખ્યાન હોગા વો તો કોઈ પતા નહીં પાયેગા, વહ તો અનુભવ ગમ્ય બાત હૈ. તો એસા જીવ બાહ્ય મેં ઉસકે કૈસે આચરણ હોતે હૈ ઉસકા કથન વિશેષ રૂપ સે વહાં દિયા ગયા રહેતા હૈ. જૈસે અનુવ્રત હૈ મહાવ્રત હૈ તો ઉનકી વિશેષતા ક્યા હૈ, ઉનકે દોષ કૌન સે હૈ, વો ટાલકર યહ જીવ કૈસા પાલન કરતા હૈ, ઇસકા કથન દિયા જાતા હૈ. લેકિન યે જીવ તો એસા હોશિયાર હૈ કે બાહ્ય મેં એસા આચરણ રખતે હુએ મેં સ્વયં ઉસ ભૂમિકા યોગ્ય હું એસા માનતા હૈ. લેકિન યે ભૂલ જાતા હૈ કે કોઈ ભી અનુયોગ હો વહ તો વિતરાગતા કા હી પોષણ કરને વાલા હૈ, ઓર અનુયોગ પઢ કર કે ઉસમે સે વિતરાગતા કૈસે હમારે મેં ઉત્પન્ન હોવે, ઉસમે સે વિતરાગતા નિકાલના આના ચાહે. જૈસે પ્રથમાનુયોગ કે ગ્રંથ હોતે હૈ વહાં રાજા રાની આદિઓ કી બાત હોતી હૈ, ઉનકે વૈભવ કી બાત હોતી હૈ, તો યે વૈભવ કી બાત સુન સુન કર તો વહ ઇતના ખુશ હો જાતા હૈ, ઇતને ઉસકે ગુજરાતી મેં બોલતે ને ગલગલિયા થાય છે. ઓર જહાં બીચ મેં ઉસને યે સારા વૈભવ કો અસાર સમજ કર ઉસકા ત્યાગ ક્યા, ઉસને એસા સોચા, ફિર વો આધ્યાત્મિક બાત આયે તો પાનને પલટતા હૈ, ફિર બાદ મેં વહાં જો નગરી કી શોભા હૈ, વહાં કી યુવતીઓ કે એસા એસા વર્ણન હૈ, વો બિલકુલ ચાવ સે પડેગા. તો ભાઈ ઉસમે યે ઇતના વૈભવ હોતે હુએ ભી ઉસ જીવને ઉસકા ત્યાગ ક્યા, ઇતની રાનિયા હોતે હુએ ભી વૈસે એસે સુંદર થી તો સુંદરતા કા વર્ણન તો અવશ્ય પડેગા, લેકિન વો છોડ કર વિતરાગ હુઆ, બસ યે વિતરાગ ભાવ સે હટા દેતા હૈ સબકો આગે. ખ્યાલ મેં આયા ને? तो यहां तो कह रहे हैं पंचास्तिकाय नामक जो कुंदाचार्य भगवान ने लिखा हुआ शास्त्र है उसमें 172 नंबर की गाथा में उन्होंने क्लियर बताया कि चारों ही अनुयोगों का सार वितरकता ही है। समझाणु काए शुभ भावना प्रेम वाला ने कलश बहु आकरो पड़े पण शू थाय वस्तु स्थिति ज आवी छे। इसलिए पहला ही शब्द दिया था, पहला ही वाक्य लिखा था ना स्वामी जी ने, क्या लिखा था? तो कहते हैं कि मुनिवरों को लोगों ने सू पड़ी छे, और यहां क्या कहते हैं? शुभ भावना प्रेम वाला ने कलश बहु आकरो पड़े पण शू थाय वस्तु स्थिति ज आवी छे, એટલે વસ્તુનું સ્વરૂપ જ આવું છે એમ કે છે। નમો લોયે સૌવ આયર્યાણમ એમ પાઠ આવે છે ને, પાઠમાં તેમ જેમને નમસ્કાર કર્યા છે એવા અમૃતચંદ્ર સ્વામી એક આચાર્ય ભગવંત છે કે જેમને રાગની રૂચિ છૂટી ગઈ છે અને આનંદના નાથની રૂચિમાં અંતરરમણતા અતિસ્પુષ્ટપણે જામી ગઈ છે। તેઓ કહે છે મહાવ્રતના પરિણામ ચારિત્ર નથી, પણ ચારિત્રનો દોષ છે, અને દોષ છે તેથી તે હેય છે। ક્યું કે મહાવ્રત કા પરિણામ જો હૈ વો કૈસા હૈ? શુભ પરિણામ હૈ, અશુભ પરિણામ હૈ, યા શુદ્ધ પરિણામ હૈ? હા સાહેબ, શુભ પરિણામ હૈ। તો શુભ પરિણામ બંધ કા કારણ હૈ, શુભ બંધ કા કારણ હૈ, તો વો કોઈ सम्यक चारित्र नहीं। अभी हमने देखा था ना, उसको चारित्र नहीं कहेंगे, यहां इनका मिथ्या चारित्र की बात नहीं है, उसको चारित्र नहीं कहेंगे, स्वभाव रूप जो परिणमन चल रहा हो उसको सम्यक चारित्र कहेंगे। तो महाव्रतना परिणाम चारित्र नथी, यानी सम्यक चारित्र नथी, पण अजु ए परिपूर्णता थई नथी तेथी ए चारित्रनो दोष छे, अने दोष छे तेथी ते हेय छे। पण रागना એટલે વ્યવહારના રાગી જીવોને આ વાત બેસતી નથી, અને રાગને વ્યવહારને જ ધર્મ જાણી તેમાં જ સંતુષ્ટ રહે છે। તેમને અહીં કહે છે કે રાગના રાગી જીવો અર્થાત પરદ્રવ્યપતિ રાગ દ્વેષ મોહવાળા જીવો રાગમાં જ સંતુષ્ટ રહી મહાવ્રતાદી પાળે છે। તો પાળો અને ઉત્કૃષ્ટપણે હો, સમિતિનું આચરણ કરે છે તો કરો, પણ તેવો પાપી જ છે। આહાહા, એકેન્દ્રિયને પણ દુઃખ ન થાય એમ જોઈને ચાલે, નિર્દોષ આહાર પાણી લે તથા હિતમિત વચન કહે ઇત્યાદિ ઉત્કૃષ્ટપણે સમિતિ પાળે તો પણ તે રાગના રાગી જીવો પાપી જ છે। બહુ આકરી વાત ભગવાન। પ્રશ્ન, પાપી અશુભ ભાવ કરનારો તો નવમી ગ્રેવે જઈ ન શકે, જ્યારે આ મહાવ્રતાદી પાળનારો તો નવમી ગ્રેવે જાય છે, તો પછી તેને પાપી કેમ કહો? દેખો કેટલા માર્મિક પ્રશ્ન હે ભાઈ। પાપી નવમી ગ્રેવકમાં ન જાય એ સાચું, અને આ પુણ્ય ઉપજાવીના જાય છે, પરંતુ નિશ્ચયથી તો પુણ્ય ખરેખર પાપ જ છે। યોગસાર દોહા 71માં યોગીન્દ્ર સ્વામી કહે છે, યોગીન્દ્ર સ્વામી કહો, યોગિન્દુ દેવ કહો, એક હી વાત હૈ, પાપ તત્વને પાપ તો જાને જગસો કોઈ, પુણ્ય તત્વ પણ પાપ છે કહે અનુભવી બુદ્ધ કોઈ। ક્યાં કહે રે? देखो जो पाप है, पाप तत्व का, तो पाप ऐसा सब लोग जानते हैं, और कौन जग के सारे लोग ऐसा जानते हैं, और पुण्य तत्व पन पाप है ऐसा कोई अनुभवी यानी आत्मानुभवी बुद्धि यानी बुद्ध यानी ज्ञानी ऐसा कोई एकाध विरला जाने। अहो केवड़ी ना केड़ा है तो એવા દિગંબર મુનિવરો તો મહાગજબના કામ કર્યા છે, તેમને જૈન ધર્મ એને ટકાવી રાખ્યો છે, આને મૂળ પાપ જે મિથ્યાત્વ તે હયાત છે તેથી તે પાપી જ છે। હવે આવો કડવો ઘૂંટડો ઉતારવો કઠણ પડે, પણ ભાઈ જેમાં રાગથી લાભ થાય એ વિતરાગ માર્ગ નથી. કહ્યું છે ને, જીન સો હી હૈ આત્મા, અન્ય સો હી હૈ કર્મ. યહી વચન સે સમજ લે જીન પ્રવચન કા મર્મ. ક્યા કહે રહે હૈ? ભગવાન આત્મા સદા જીન સ્વરૂપ, વિતરાગ સ્વરૂપ જ છે. જીન સો હી હૈ આત્મા, અન્ય સો હી, અને ઇસકે અલાવા સારા કુછ હૈ કર્મ હૈ. એ કહેતે કે આ સિવાય રાગાદી અન્ય સર્વ કર્મ છે. જીન પ્રવચનનું આ રહસ્ય છે કે રાગભાવ ધર્મ નથી, કર્મ છે. તો જ્ઞાનીને પણ તો રાગ તો હોય છે. હા, જ્ઞાનીને યથાસંભવ રાગ હોય છે. યથાસંભવ કા અર્થ ક્યાં લેના? હા મમ્મી, વાહ વાહ, ભૂમિકા અનુસાર. યાને ચોથે ગુણસ્થાનવર્તી જીવ કે રાગ અલગ ટાઈપ કે હોંગે, પંચમ ગુણસ્થાનવર્તી કે રાગ અલગ ટાઈપ કે હોંગે, ઓર સાતવે ગુણસ્થાનવર્તી કે હા વો ભી અલગ હોંગે કે નહીં, યહી પૂછતા હું મેં. હા, આપ કહેતે હૈં વહાં રાગ કી વિદ્યમાનતા હૈ, લેકિન છઠે ગુણસ્થાન કે જૈસે વ્યક્ત રૂપ સે હૈ વૈસે નહીં હૈ, અવ્યક્ત રૂપ સે અબુદ્ધિપૂર્વક રાગ ઉનકે ભી હૈ. લેકિન યહાં ક્યા હુઆ, હમ તો છઠે કી બાત કરેંગે, ક્યોંકિ જો વ્યક્ત હૈ ઉસકી બાત લેંગે. તો કહેતે હૈં જ્ઞાનીને યથાસંભવ રાગ હોય છે, પણ એને રાગની રુચિ નથી, એને રાગનું સ્વામિત્વ નથી. અહીં તો જેને રાગની રુચિ છે, રાગથી ભલું એટલે કલ્યાણ થશે એવી માન્યતા છે, તે ગમે તેવું આચરણ કરનારો હોવા છતાં અજ્ઞાની છે, પાપી છે એમ વાંચે. કેમ કે તેને વિતરાગ સ્વભાવી આત્માનો આશ્રય નથી. આહા, જેને આશ્રવ બંધ રૂપ પુણ્યપાપના ભાવને આદરણીય માન્યા છે, તેને સંવર નિર્જરાને મોક્ષને જાણ્યા જ નથી. એસા ક્યું કહે રહે હૈ? હા, ક્યા લિખા? દેખો દેખો દેખો, કહેતે કે જેને આશ્રવ બંધ પુણ્યપાપના ભાવને આદરણીય માન્યા છે, એસે જીવને સંવર નિર્જરા ઓર મોક્ષ કો જાના હી નહીં હૈ. એસા ક્યું કહે રહે હૈ? કોણ બતાયેગા? હા, તો અભી ઉસને કોણ સે તત્વ કો અલગ માના? ક્યા માના ઉસકો? હા, શુભ કો ધર્મ રૂપ માના. હા, તો યાને જો આશ્રવ તત્વ હૈ ઉસસે ધર્મ હોને કા ઉસને માના, તો ઉસકો ધર્મ રૂપ જો તીન પર્યાય હૈ, કોણ સી? સંવર નિર્જરા ઓર મોક્ષ, ઉનકો હી સહી રૂપ સે નહીં જાના, ઇસલિયે તો ઉસકી મિથ્યા કલ્પના હો રહી હૈ, ગલતિયાં હો રહી હૈ. બહોત અચ્છા, દેખો ફિર સે. હા, ઉપાધ્યાયમાં એટલે એટલે ગ્રહણ કરવા યોગ્ય માયનો, એટલે એને તો એવી માન્યતા છે ને કે ઉપર લખ્યું ને બેન, કે રાગથી ભલુઅ થશે, રાગથી કલ્યાણ થશે એવી એની માન્યતા છે. એટલે એને કહ્યું કે રાગથી, એટલે આપણી ભાષામાં કહીએ તો રાગ કરતા કરતા વિતરાગતા આવશે એમ એને માન્યું છે. તો વિતરાગ સ્વરૂપ જે સંવર તત્વ છે એની અંદર રાગની ભેળસેળ કરી છે, એટલે એ કહે છે કે એને સંવરને જાણ્યો નથી, નિર્જરાને જાણ્યો નથી અને મોક્ષને જાણ્યો નથી, તેને પોતાના આત્માને અને પરને ભિન્ન ભિન્ન જાણ્યા જ નથી. ભાઈ, રાગ હોય તે જુદી ચીજ છે અને રાગની રુચિ હોવી જુદી ચીજ છે. કિતની સહી વાત બતાવી હો. તો હમ તો એસા હી દેખતે કે અરે ઇસકો અભી રાગ હૈ ના, જાને દો, હવે ઉસકે રાગ કે પ્રતિ કિતની રુચિ હૈ વો દેખતે હી નહીં હૈ, સમજતા હી નહીં તો ક્યાં દેખેગા. હા, અજ્ઞાની જીવ રાગની રુચિની આડમાં, રાગથી ભિન્ન અંદર આખો ચૈતન્યથી ભરેલો ભગવાન આત્મા છે, તેને જાણતો નથી. ક્યા કહેના ચાહતે? દેખો જૈસા યે બાર બાર સ્વામીજીને ઉદાહરણ દિયા હૈ ઓર યહાં વો બરાબર લાગુ પડતા હૈ કે જૈસે હમ કહીં હિલ સ્ટેશન પર ગયે ઓર વહાં સે સામને સમુંદર ઇતના બડા સમુંદર દિખ રહા હો ઓર હમને આંખો કે સામને એક ચાર ઉંગલી કી એક પટ્ટી એસે સામને રખી યા બહોત ચાહીએ તો રૂમાલ રખા જો એક ફૂટ બાય એક ફૂટ કા હોગા તો ઉસસે કોસો પ્રસરા હુઆ સમુંદર ભી ઢક જાતા હૈ. વૈસે યહાં કહે રહે હૈ કે યહ જીવ કો રાગ મે ઇતની બડી રુચિ હૈ, ઇતના ઉસમે વો ફસા હુઆ હૈ કે ઉસકે આડ મે ઉસકો અપના અખંડ આત્મા જો હૈ ત્રિકાલ બસને વાલા વહ ઉસકો દૃષ્ટિગોચર નહીં હોતા હૈ, દિખાઈ નહીં દેતા હૈ. ક્યા કહા? કે જીવ રાગની રૂચિની આડમાં રાગથી ભિન્ન અંદર આખો ચૈતન્યથી ભરેલો ભગવાન આત્મા છે તેને જાણતો નથી. રાગને ભલો જાણે તે રાગથી કેમ ખસે? ક્યા કહા? બહુ બઢિયા વાક્ય હૈ કે જીસકો હમને ભલા માના હૈ ક્યા ઉસસે હમ દૂર હોંગે કભી? ન જ ખસે. જ્યારે જ્ઞાનીને આત્માની રુચિ અને રાગની અરુચિ છે, જ્યારે જ્ઞાનીને આત્માની રુચિ છે અને રાગની અરુચિ છે, તે રાગને ઉપાધિ જાણે છે અને આત્મરુચિના બળે તેને દૂર કરે છે. જ્ઞાની અને અજ્ઞાનીના અભિપ્રાયમાં આસમાન જમીનનો ફરક છે. અજ્ઞાની તો ઉપાધિ ભાવને પોતાનો જાણી લાભદાયક માને છે અને તેથી જ અહીં કહ્યું છે કે અજ્ઞાની પંચમહાવ્રતાદિનું આચરણ કરે, ચોખ્ખા હો તો પણ પાપી જ છે. ભાઈ, વિતરાગની આજ્ઞા તો વિતરાગતા પ્રકટ કરવાની છે. વિતરાગની આજ્ઞાને કિસકી આજ્ઞા હોની છે મમ્મી? વિતરાગી સર્વજ્ઞ ભગવાન કી. દેખો ઉસકો સર્વજ્ઞ કહેને સે વે વિતરાગી હૈ યે ભૂલ મત જાના. અભી વૈસે તો 11વા 12વા ગુણસ્થાન વર્તી ભી વિતરાગી હૈ, લેકિન વો ઉપદેશ દેગા કે નહીં? તો ઇસલિયે યહાં રાગી કી જો વિતરાગતા કી બાત જો કી હૈ, હા, તો વો આજ્ઞા યાની ઉનકા જો કથન હૈ વો તો 13વે ગુણસ્થાન મે હોગા. ઓર વો કહે રહે કે વો ક્યા કહેતે હૈ કે આપ સ્વયં મે વિતરાગતા પ્રકટ કરો. તો યે જો અપને ભલે કે લિયે બાત હૈ તો ઉન એસા કહેતે હૈ ના, યોર વિશ ઇઝ માય કમાન્ડ સર, એસા કુછ હોતા હૈ. તો વૈસે યહાં ઇનકી વિશ નહીં હૈ ઓર ના કે વો કોઈ ઉપદેશ દેને કે લિયે દે રહે હૈ. યહાં તો ઉન્હોને યે વસ્તુ સ્વરૂપ બતાયા હૈ તો વો હમે શિરોધાર્ય હૈ, વો હમારે લિયે આદરણીય હૈ, વો હમારે લિયે આજ્ઞા હૈ. તો કહેતે વિતરાગની આજ્ઞા તો વિતરાગતા પ્રકટ કરવાની છે, રાગને પ્રકટ કરવાની અને તેને આદરણીય માનવાની વિતરાગની આજ્ઞા નથી. રાગ કરતા કરતા સમ્યક દર્શનાદિ નિર્મળ રત્નત્રય પ્રકટ થશે, એ તો લસણ ખાતા ખાતા કસ્તુરીનો ઓળકાર આવશે એવી એના જેવી મિથ્યા વાત છે. અરે, અજ્ઞાનીઓ તો સદાય નિત્ય શરણરૂપ એવા ભગવાન આત્માને છોડી દઈને નિરાધાર અશરણ એવા રાગને પોતાનો માની ગ્રહણ કર્યો છે. નિરાધાર ક્યું? ક્યુકે એક સમય મેં ઉડ જતા હૈ, કાં રહેતા હૈ, હા, ઇસલિયે કહા નિરાધાર હૈ ઓર અશરણ હૈ, યાને વો શરણ લેને યોગ્ય નહીં હૈ. એવા રાગને પોતાનો માની ગ્રહણ કર્યો છે તે ત્યાં સંતો અતિ સ્પષ્ટ કહે છે કે પંચમહાવ્રતાદિને પાળનારા હોવા છતાં એને જ કર્તવ્યને ધર્મ માનનારા તેવો પાપી જ છે, મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે. ભારે આકરી વાત. પણ દિગંબર સંતોને કોની પડી છે? તેમને તો માર્ગ જેવો છે તેવો સ્પષ્ટ જાહેર કર્યો છે. જુઓને, ત્રણ કષાયનો જેમને અભાવ થયો છે એવા તે મુનિવરો કિંચિત રાગ તો છે પણ તેને તેવો આદરણીય માનતા નથી. અભી હમ યહી રુકેંગે. जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकणमो सदा देत हो। अश्विन भाई,